ओम शांति। जब ब्राह्मण जीवन में हम पुरुषार्थ का लक्ष्य रखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, टाइम टेबल। अगर दिनचर्या सेट है तो पुरुषार्थ हम अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने कुछ दिनचर्या यज्ञवत्सों के लिए बनाई थी, कुछ उनकी पर्सनल दिनचर्या थी। तो ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या आज का टॉपिक है ये। तो कैसी थी बाबा की दिनचर्या? बाबा ने जो दिनचर्या बनाई थी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, जैसे कि वो बहुत सहज थी और जिसमें पुरुषार्थ भी अच्छा कर सकते थे, जिसमें रेस्ट का भी टाइम था और काफी अच्छी थी वो दिनचर्या। और वही दिनचर्या हम काफी हद तक हम सब अभी भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले 1962 में जब छोटा हॉल बना था तब बाबा ने अमृत वेला का मेडिटेशन चालू किया था। तो 4 बजे गीत बजता था और सब लोग आके छोटे हॉल में बैठते थे। बाबा संदली पर बैठते थे और बाबा के सामने सभी बच्चे रहते थे और बाबा एक एक बच्चों को दृष्टि देते थे। और वो दृश्य ऐसा होता था कि इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली अनुभव होता था सभी बच्चों को। तो उस तरह से 4:15 से 4:30 बजे तक बाबा बच्चों को दृष्टि देते सामने बिठा के। फिर बाबा उठकर थोड़ा चलकर आंगन में, जो अभी शशि बहन जी का ऑफिस है, वहां पर एक लाइट फिक्स थी। फिर बाबा वहां चलकर खड़े हो जाते थे जाकर धीरे धीरे से, और धीरे धीरे सब बच्चे बाबा के पीछे जाते और फिर आंगन में खड़े रह के बाबा सब बच्चों को दृष्टि देते और वहां पर जैसे कि फरिश्ते स्वरूप का बाबा अनुभव कराते, फरिश्तेपन का। तो 4:30 से 4:45 तक ये दृश्य चलता। ऐसे ही आधे घंटे का ये अमृत वेला का योग होता उनका। फिर 6 बजे सभी बच्चे स्नान वान करके हॉल में पहुंच जाते और 6 से 6:15 तक मम्मा उनको साइलेंस में मेडिटेशन कराते थे। 15 मिनट मेडिटेशन के बाद 6:15 से 6:30 तक मम्मा की मुरली चलती थी। फिर बाबा धीरे धीरे आंगन से आकर दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे और जैसे ही मम्मा बाबा की आवाज सुनती कि बाबा आ गए हैं, मम्मा तुरंत चुप बैठ जाती थी। कई बार बाबा मम्मा को कहते थे मम्मा और सुनाओ, लेकिन मम्मा इतनी आज्ञाकारी थी कि बाबा के सामने कुछ नहीं बोलती थी। तो मम्मा अपनी वाणी को विराम दे देती 6:30 बजे। उसके बाद बाबा आके बैठते और तभी ग्रामाफोन था ना, तो उस पे 3 मिनट का गीत बजता था। तभी भक्ति वाले गीत थे, मैं नहीं इनको राह दिखाओ, ऐसे कोई गीत बजते 3 मिनट के। और फिर बाबा की मुरली चलती। बाबा की मुरली कम से कम 45 मिनट्स तक चलती थी। फिर छोटे हॉल में मुरली चलती थी। उसके बाद मुरली क्लास के बाद सब लोग मम्मा के पास जाते रूम में। एक चेम्बर था जिसको प्रिंसेस चेम्बर कहते थे। उस प्रिंसेस चेम्बर में सभी बच्चे मम्मा बाबा के साथ बैठते थे और फिर वहां पर कविताएं सुनाते थे, गीत सुनाते थे। ऐसे एक परिवार का वातावरण रहता, वो अलग सा माहौल बन जाता वहां पर। और मम्मा बाबा उनको फिर बहुत प्यार से अपने पास बिठाकर टोली खिलाते थे। ये होता। इसके बाद बाबा को पत्र लिखने होते थे। जैसे कल बता रहे थे ना, बाबा की लिखने की स्पीड बहुत फास्ट थी। तो जो दादियां बाहर रहते थे, दीदी बाहर रहते थे, जगदीश भाई जी, गुलजार दादी, इन सभी लोगों के लिए बाबा पत्र लिखते थे। और जो मुरली चली बाबा की मॉर्निंग में, उस पर बाबा का जो विचार चला, बाबा को इतनी वैल्यू थी उन रत्नों की, तो जो भी बाबा का विचार चलता था तुरंत बाबा फास्ट फास्ट लिखते थे। ऐसे तो जो मुरली चलती उसकी शॉर्ट हैंड यीशु दादी करते थे, फिर उसका लिथो होता था और फिर वो अलग अलग जगह पे जाती थी। ऐसे 15-20 स्थानों पर जाती थी और फिर 10 बजे पोस्ट जानी होती थी, तो 10 बजे तक वो कम्प्लीट करना होता था। फिर विश्व रतन दादा आई थी, वो लेके जाते थे पोस्ट 10 बजे। फिर उसके बाद बाबा आंगन में थोड़ा सैर करते और फिर 10 बजे तक बाबा जाके कुटिया में बैठ के, झोपड़ी में बैठ के रेस्ट करते थे एकांत में। हाँ, नाश्ता भी होता उसके पहले। दस बजे एकांत में बैठते थे और विचार करते थे बाबा झोपड़ी में। और साढ़े ग्यारह का, सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह का टाइम था सब बच्चों को मिलने का, जो भी लोग मधुबन में आते थे पांडव भवन में, तो उनको बाबा से कुछ विचार करना होता था, कुछ प्रश्न पूछने होते थे, कई गृहस्थी थे, कोई समस्या होती थी, तो सबकी बातें बाबा सुनते। और जैसे कि लंबी लंबी स्टोरी कभी बाबा सुनते नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में सुनते थे और फिर अपना विचार बता देते थे, तो ये चलता। और फिर सवा बारह बजे भोजन की घंटी बजती थी और सवा बारह बजे सभी लोग भोजन के लिए जाते थे। बाबा, जैसे कहते हैं कि बाबा का वृद्ध शरीर था, तो फिर चंद्रास दादा बाबा की मसाज करते थे और फिर बाबा वापस से स्नान करके डेढ़ बजे तक बाबा दोपहर का भोजन करते थे। तो इसी बीच बहुत सारी चीजें भी चलती थी। बाबा जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर सिर्फ बाबा 15 मिनट ही पढ़ते थे, उससे ज्यादा कभी बाबा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। और वो भी क्यों पढ़ते थे, देखने के लिए कि सेवा कहाँ कहाँ हो सकती है। तो बाबा बच्चों को भी बताते थे, जैसे बाबा जब मुंबई में रहते थे तो वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स आता था, तो बाबा उनको कहते थे कि देखो विदेश से कौन कौन आने वाला है, और फिर वो ढूंढो और उन लोगों की सेवा करना जाके, उनको पत्र लिखो। तो इसीलिए ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। ऐसे ही कभी रेडियो पर अगर कोई गीत बजा दिया तो बाबा थोड़ी देर सुनते और फिर बंद करने के लिए कहते तुरंत से, क्योंकि बाबा अपनी धुन में ही मगन रहते थे बाबा की याद में। और बाबा की दिनचर्या में ऐसा होता कि बाबा अधिक से अधिक टाइम बच्चों के लिए रखते थे, बच्चों के प्रति, बच्चों से बातें करना। ऐसे ही कभी बाबा मम्मा को कहते थे कि बच्चों को पिकनिक लेके जाओ आज, तो जो अनादरा पॉइंट है, मम्मा वहां पे पिकनिक लेके जाती थी बच्चों को। और जैसे कि वहां पे कुल्फी आइसक्रीम की पार्टी होती उन लोगों की, तो कभी वहां पर पहले तो मम्मा उनको मेडिटेशन करवाते और फिर उसके बाद वहां पे गीत संगीत और कविताएं और फिर ज्ञान की लेन देन होती और फिर कुल्फी आइसक्रीम की पार्टी होती उनकी। कभी कभार बाबा, जैसे हम जानते हैं, पहाड़ियों पर लेके जाते थे, तो बाबा 70 प्लस थे और फिर भी बाबा दौड़ दौड़ कर पूरा यहाँ से चलते हुए जाना, और उनके पीछे इतनी सारी माताएं और कन्याएं और सब यहाँ के माउंट आबू के लोग देखते ही रहते कि ये सफेद वस्त्रधारी कहाँ इतना भाग भाग के इतनी फुर्ती से जा रहे हैं, जैसे कि इनको कहीं पहाड़ों पर स्वर्ग मिलने वाला है, ऐसे उछल उछल के जाते थे। तो और सब लोग वो देखते थे, जब तक वो लोग पास नहीं हो जाते, माउंट के लोग खड़े रह के उनको देखते ही रहते थे कि ये कहाँ जा रहे हैं। और फिर पहाड़ पर पहुंचने के बाद वहां पर भी ज्ञान की चर्चा होती, ज्ञान के काफी गृह रहस्य खुलते वहां पर भी बैठे बैठे, और वहां पर भी बाबा उनको योग कराते थे। और फिर बाबा बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे और अलग अलग पहाड़ी पर जाके बैठने बोलते थे और वहां पे फिर ज्ञान मंथन करने के लिए कहते। कभी कभार वहां पर जो ट्रांस में जाते थे, अचानक से वो लोग पहाड़ी पर भी ट्रांस में चले जाते और जैसे कि रास करने लगते थे, पहाड़ों पर डांस करते थे वो लोग, तो दूसरे बच्चों को लगता था कि कहीं ये डांस करते करते पहाड़ी से गिर ना जाए। लेकिन कहते हैं कि जिसने भगवान का हाथ पकड़ा, जो कृष्ण का हाथ पकड़ के डांस कर रहे, वो कैसे गिर सकते, तो ये भी पहाड़ों पर होता। और बाबा कभी कभी खाने पीने का सामान भी लेके जाते वहां पर, और वहां पर भी उनकी पिकनिक होती और वहां पर भी उनकी चिटचैट होती, तो ये होता कभी दिनचर्या में। कभी बाबा बच्चों से मिलते, जो लोग आते हैं बाबा से मिलने आते थे पार्टी वाले, तो बाबा उनको टोली खिलाते थे ना हमेशा, तो बाबा पूछते थे कि बहनों की तरफ से वो उठो जो कभी रोते नहीं है, जो कभी रोई नहीं है वो उठो, वो टोली बांटेंगी। और भाइयों के साइड से बाबा कहते कि जिसने कभी गुस्सा नहीं किया है वो भाई उठो और वो टोली बांटेगा। ऐसे दृश्य चलता था। और फिर जब भी कोई बच्चे मधुबन में आते तो बाबा पर्सनली उनको विदाई देते थे। तो जैसे कि कल बता रहे थे ना कि वो जो बड़ का पेड़ है, उधर तक बाबा चल के जाते थे मम्मा बाबा। और जैसे कि जब भी कोई जाता था तो वो गीत बजता था, तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, तो सबकी आंखों में बड़े आंसू आ जाते और सब रो रो के मतलब बाबा से विदाई लेते। और बाबा की एक थोड़ी स्टाइल थी, बाबा रुमाल निकालते थे और रुमाल हिला हिला के जब बच्चे बैठ जाते थे बस में, हाँ बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी में तो रुमाल हिला हिला के बाबा उनको विदाई देते थे। तो वो एक सीन होता था। और बाबा का पूरे दिनचर्या में यही लक्ष्य रहता था कि जब भी बच्चे मुझसे मिले तो उनको शिव बाबा की याद रहे। तो कई भाई बहने अपने अनुभव में लिखते हैं कि हमको अभी आदत हो गई है क्योंकि बाबा ने हमको सिखाया कि अचानक भी किसी को मिलो ना दिन में तो पहले दृष्टि देना है और फिर वाचा में आना है। तो ऐसे ही बाबा का लक्ष्य रहता कि जब बच्चे मुझसे मिले तो शिव बाबा की याद में मिले। और दूसरा बाबा का ये रहता था कि बाबा हमेशा चाहते कि इनको मैं मात पिता बंधु सखा सबकी फीलिंग दे सकूं मैं इनको, ताकि इनको इनकी संबंधी याद नहीं आए, इनको मैं टीचर भी बन के देखूं तो सदगुरु बन के भी देखूं तो बाप सब कुछ मैं इनका, ऐसी फीलिंग। तो बाबा कभी कभार कोई कोई पार्टी आती तो बाबा उनको वो जो फुलका बनाते थे उस पे मक्खन और शक्कर डाल के बाबा एक एक बच्चे को लाइन से अपने हाथ से खिलाते थे। तो हाँ छोटा छोटा मक्खन माने, हाँ वो खिलाते थे। हाँ यहाँ पर भी जैसे बड़ी दादी जी थे तब वो भी खिलाते थे, अभी हाँ अभी मुन्नी बहन जी रतन मेरी दादी, तो अभी भी वो सीन हम देखते तो वो भी चलता है अभी तक। तो ये बाबा का लक्ष्य रहता। और बाबा की दिनचर्या बहुत बैलेंस्ड रहती थी। और शाम को 5 से 6 बजे जैसे कि बैडमिंटन खेलने का टाइम होता था तो एक तरफ मम्मा की टीम होती थी एक तरफ बाबा की टीम होती थी, और जो हार जाता था जो टीम हार जाती थी उसको डबल टोली मिलती थी। तो ऐसा क्यों होता होगा? हाँ तो बाबा जीत जाए तो हारने की हिम्मत नहीं, तो पापा कहते थे इनको डबल टोली खिलाओ क्योंकि ये खा के थोड़ी ताकत आ जाए इनमें तो अगली बार ये जीतेंगे। तो ऐसे करके तो भगवान की सारी रीति न्यारी है देखा जाए तो। तो बैडमिंटन खेलते थे और शाम को फिर बैडमिंटन खेलने के बाद बाबा थोड़ा सूप लेते थे। तो ऐसी उनकी दिनचर्या में जो भी भोजन का भी चीजें थी वो भी बड़ी सादगी से थी, जैसे कि थोड़ा सा नाश्ता लेना, भोजन करना, शाम को सूप पीना, रात को 1 कप दूध पीना, ऐसे होता था। और बाबा जैसे कि बाहर भी रहते थे तो उनकी दिनचर्या में बाबा बच्चों के लिए टाइम देते थे ना, तो जैसे कि VIP जाके बाबा से मिलते थे। और बाबा हमेशा हर चीज में न्यूनेस चाहते थे, कुछ नवीनता हो, उमंग उत्साह बच्चों में भरना। तो जैसे कि एक बार निर्मल भाई जी अनुभव में बताते, वो बॉम्बे में थे पहले और बाबा ने उन्होंने क्या किया, एक पेन से एक सीढ़ी का चित्र बनाया और बाबा को भेज दिया। तो बाबा ने वो चित्र देख के बोला, ये क्या कीड़े मकोड़े भेज दिए बाबा को तुमने? तो फिर उनको ऐसा लगा पापा की टचिंग हुई, फिर उन्होंने आर्टिस्ट से पूरा पेंटिंग करके फिर भेजा, तब बाबा को बहुत अच्छा लगा और बाबा ने बहुत अप्रिशिएट किया पहले दिन। फिर नेक्स्ट डे से बाबा ने उसमें करेक्शन चालू की। तो ऐसे बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते थे। ऐसे ही वो निर्मल भाई जी बताते हैं कि बाबा हमेशा चार्ट लिखने के लिए कहते थे, तो दिनचर्या में चार्ट भी होता है, तो बच्चे चार्ट लिख के बाबा को भेजते थे और जब बाहर भी रहते थे तो भी भेजते थे। तो फिर बाबा ने एक बार उनसे कहा कि अभी तुम मत भेजो, अभी तो अभी अपने आप ही लिखो, बाबा जानता है कि तुम लिख रहे हो। तो उन्होंने ठीक कहा। ऐसे ही 6.5-7 साल तक वो लिखते रहे चार्ट। फिर उनको लगा अभी तो ये रेगुलर हो गया है, अभी क्या लिखने की जरूरत, तो उन्होंने बंद कर दिया चार्ट लिखना। और तुरंत 1 हफ्ते के बाद बाबा का फोन आया कि बच्चे अपना चार्ट भेजना 1 हफ्ते का। तो उनको लगा अरे अभी तो मैंने चार्ट अभी बंद किया और बाबा ने पूछ लिया। तो उन्होंने बड़े नम्रता से कहा कि बाबा आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह बाबा एक एक बच्चे पर अटेंशन देते थे कि क्या सेवा करनी है, क्या किस इंस्टीट्यूशन में आपको जाना है आज, वहां पे हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये सब बाबा ध्यान में रखते थे। और फिर बाबा जैसे दिन भर में चक्कर भी लगाते थे ना सब जगह पर, जैसे यज्ञ के बच्चे ही सब कुछ सेवा करते थे, तो जैसे किसी की भोजन में सेवा होती थी तो बाबा भंडारी में जाके उनसे पूछते थे कि शिव बाबा याद है तुम किसका भोजन बना रही हो, तुम शिव बाबा के यज्ञ का भोजन बना रही हो तो बाबा की याद में रह के बनाओगे तो ये भोजन शक्तिशाली होगा। ऐसे ही बाबा सिलाई जो बहने करती थी उनके पास कभी पहुंच जाते और उनको कहते थे कि जैसे आप हाथों से सिलाई कर रही हो वैसे अगर बुद्धि से भी कमाई करोगी तो तुम्हारी अविनाशी कमाई होगी, बुद्धि से बाबा को याद करोगी तो। और उनको कहते कि जैसे ये पोशाक बना रहे हो ना आप, वैसे अपने राज्य अधिकारी बनने का, पोशाक के अधिकारी बनने का ऐसा पुरुषार्थ करो तुम। फिर बाबा कभी धोबी घाट में पहुंच जाते और वहां पे जो कपड़े धोते तो उनको कहते कि तुम तो इस वस्त्र, ये देह के वस्त्र धो रही हो लेकिन बाबा तो बेहद का धोबी है, तो कपड़ों के साथ अपनी आत्मा को भी धोते जाओ, तो ऐसे उनसे कहते बाबा। और बाबा की दिनचर्या में कभी भी थकावट नहीं होती थी, कभी कोई उदासी नहीं, निराशा नहीं, हमेशा उमंग उत्साह फूर्ति में रहते थे बाबा। और जैसे कि ये गीत बजता था, रात को गीत बजता था सो जा राजकुमारी, और सुबह में गीत बजता था जाग सजनिया जाग, तो ये भी गीत था। और एकोमोडेशन भी जब बच्चों को बच्चे आते थे तो बाबा उनसे उनको पर्सनली पूछते थे कि सब कुछ अकोमोडेशन ठीक से मिल गया, अगर जिसको अकोमोडेशन नहीं मिला है वो बाबा के बाजू में आके सो सकता है रात में, ऐसे कहते थे। और जैसे बता रहे थे ना बाबा चारपाई, या तो बाबा उनसे कहते बाबा की जो चारपाई है ना वो बहुत ऊंची है तो आप अपनी चारपाई लगा के बाबा के नीचे लगा देना और सो जाना, तो ये भी होता था। और ये सारे दिनचर्या चलती, फिर रात में कचेरी लगती थी तो सबसे पहले मम्मा बैठ के बच्चों को पूछती थी कि सब कुछ ठीक है, तो ठीक है का मतलब मनसा वाचा कर्मणा ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई और किसी ने एक दूसरे और मतलब एक दूसरे की गलतियां भी वो बड़े अच्छी कल्याण की वृत्ति से बता देते थे अगर किसी और ने भी गलती की तो मम्मा उनको वो पूछती। फिर उनको ये भी पूछा जाता था कि आपको कोई साधनों की जरूरत है, मतलब पर्सनल कोई सेल्वेशन चाहिए तो पूछ सकते हो। फिर थोड़ी देर में बाबा भी आते, फिर बाबा पूछते मम्मा आपने इनकी खुश खराफत पूछी, सब लोग खुश हैं, जैसे ये जो है ना ये शिव बाबा का भंडारा ये सब आपका ही है, यज्ञ का जो भी है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई खाने पीने की आदत है तो बाबा बनवा सकते हैं आपके लिए, तो कोई लज्जा की बात नहीं है, ऐसे पूछते हैं। और जो भी कोई गलती करता उसको डायरेक्शन दिया जाता कि कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, और काफी धारणाओं की बात होती उस रात की क्लास में। एक बार सीतू दादी अनुभव बताते हैं, और दिन में उनका भोजन परोसने का टर्न था तो एक बार हलवा बना था और हलवा उस दिन बहुत अच्छा बना था, तो कई बहनें वापस मांग रही थी हलवा कि वापस चाहिए, तो दादी बाबा के पास गए और बोला बाबा को कि बाबा आज हलवा बना है और बहुत अच्छा बना है और सारी बहनें वापस मांग रही है बाबा, तो बाबा ने कहा दे दो, तुम एक दिन नहीं खाओगी तो चलेगा, तो उन्होंने जाके दे दिया। फिर रात में जब क्लास हुई तो बाबा मम्मा को कहते कि मम्मा आज हलवा बहुत अच्छा बना था लेकिन मम्मा मैंने दोबारा नहीं मांगा, तो मैं दोबारा अगर खाता ना तो फिर दूसरों को नहीं मिलता ना, इसीलिए बाबा ने मांगा नहीं मम्मा, और मम्मा एक ही बार खाया बाबा ने, तो इस तरह से किसे इनडायरेक्टली बच्चों को ध्यान खिंचवाते शिक्षा देते, तो ये धारणा की क्लास रात में भी होती। तो ऐसे फिर बाबा की 15 मिनट रात की मुरली चलती और 9:30 बजे के अंदर सब कुछ फिनिश हो जाता, और फिर बाबा पर्सनली जाके सबको देखते कि सबको बिस्तर ठीक से मिल गया है, सब ठीक से सो गए हैं, और फिर रात में बाबा सोते, तो जागते भी सबसे पहले बाबा और सोते सबसे लास्ट बाबा। हाँ वो सब भी होता था कि एक एक टॉर्च लेके जाके देखना कि किसी के मच्छरदानी में मच्छर नहीं है उसमें, ये सारी चीजें भी चलती। इतना एक बार चक्रधारी बहन जी अनुभव सुनाते, एक बार वो पार्टी लेके आए थे तो बाबा ने उनसे कहा कि सबको बिस्तर ठीक से मिल जाए, माताएं आई थी और तुम फिर बाद में आके बताना। तो फिर उन्होंने सबको दे दिया कि सबको ठीक से पिलो मिल गया, चादर मिल गई। और फिर बाबा आए और बाबा ने ऐसी चक्कर लगाई रूम में, और फिर बाबा ने बाहर आके बोला कि वो बेड पे जो माता है ना उसके पास तकिया नहीं है। तो बाबा को बहन बोलने लगी कि है ना, है बाबा, मैंने सबको बोल दिया था पहले ही कि है ना बाबा मुझसे पूछने वाला है, तो सब लोगों को मिल गया कि पहले ही बता दो। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, बाबा ने देखा, मतलब इतना ध्यान रहता था इतनी छोटी छोटी चीजों पर। तो ऐसी बाबा की दिनचर्या थी। किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, जैसे कल तो बताया था ना कि नींद भी मम्मा बाबा की कैसी थी। ओम शांति।